الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی 61 نمبر آیت سے آج ہم شروع کر رہے ہیں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا و فومیہ و عدسیہ و بصلیہ کالا تستبدلون الذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر یاد کرو جب موسیٰ نے تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کر دے جو زمین اگاتی ہے خربوزوں میں سے، ککڑیوں میں سے، تھوم اور لہسن اور پیاز وغیرہ میں سے. تو حضرت موسیٰ نے آگے سے کہا کہ کیا تم بڑیا چیز دے کر چھوٹی چیز لینا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اے بتو مصرن، اب کسی شہر میں چلے جاؤ پھر، اور کیونکہ وہیں تمہارے لیے جو کچھ تم مانگ رہے ہو مل سکتا ہے. تو چنانچہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، نبیوں کا قتل کر رہے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ خدا کی نافرمانی کر رہے تھے، اور وہ تھے ہی حد سے تجاوز کرنے والے. کلام جہاں سے شروع ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، دوبارہ مختصر طور پر دہرا دیتا ہوں کہ یہود کا خیال تھا کہ ہم حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے، ہم جو مرضی کر لیں جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کب تمہارے ساتھ ایسا کیا کہ صرف اس وجہ سے کہ تم انبیاء کی اولاد ہو تمہارے ساتھ کب نرمی کی ہے؟ جب بھی تم نے اچھا کام کیا میں نے بھی تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، جب تم نے غلط کام کیا میں نے تمہیں سزا دی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہاں پہنچا دیا ہے بات کو کہ تمہارے جرائم کے لحاظ سے میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ معاملہ کیا ہے، تو میرا غضب تمہارے اوپر آیا اس لیے کہ تم نافرمانی کر رہے تھے، انبیاء کو قتل کر رہے تھے. اب اس کے لیے جو واقعہ سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے. جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ من و سلوہ کے حوالے سے بات ہے، تو تم نے کہا کہ ہمیں وہ سبزیاں اللہ تعالیٰ فراہم کر دے. ظاہر ہے کہ من و سلوہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے، ایک ہی طرح کا کھانا جو ہے وہ قوموں کے لیے، انسانوں کے لیے اس پر گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو روزانہ ایک ہی سالن، خواہ وہ گوشت ہی کا سالن کیوں نہ ہو یا کوئی آپ کی پسندیدہ ڈش ہی کیوں نہ ہو، اگر روزانہ وہی دینے لگ جائیں ہم تو آپ اکتا جائیں گے. یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. یہ فطری سی ایک بات تھی، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی کہ ایک کھانے پر ان کا جی بھر گیا تھا اس سے. لیکن جو پسندیدہ بات نہیں تھی وہ یہاں سے بحث آئی، وہ موسیٰ کے جواب سے ہم سمجھیں گے چل کر. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر پا رہے، تو آپ ہمارے لیے سبزیاں فراہم کیجئے تاکہ ہم وہی پرانے طریقے کی ہنڈیاں بنائیں اور کھانا کھائیں، مختلف قسم کی، اور سلاد کی چیزیں جو ہوتی ہیں، خربوزے اور ککڑیاں اور کھیرے اور اس طرح کی چیزیں، وہ بھی کھائیں، اور لہسن اور پیاز سے اپنے کھانوں میں ذائقہ بہتر کریں. اب جو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جرم کیا تھا. انہوں نے کہا کہ کیا تم وہ چیز جو اچھی ہے اس کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ اب یہ کون سی گھٹیا چیز ہے، کون سی بڑھیا چیز ہے؟ ایک سادہ نظر سے دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ جیسے من و سلوہ کو چھوڑ کر پیاز اور لہسن کی بات ہو رہی ہے، کہ کہاں من و سلوہ اور کہاں لہسن اور پیاز، بظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی غذا ہے، وہ بھی غذا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بند ہو جائے، ایسا تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ سبزیاں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں. تو اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اس صحرا میں مصر سے نکال کر لائے ہیں حضرت موسیٰ، مقصد کیا ہے، अव्वल तो ये देखिए कि सादा अगर आदमी ना भी कोई बामकसद बड़े जहन का ना भी हो, तब भी इतनी बात तो उसको समझ आ रही थी कि ग़ुलामी से निकल आए हम, फिरौन के जुल्म से निकल आए, और अब वो शिकवे कर रहा है कि भाई मुझे एक खाने के ऊपर तसल्ली नहीं हो रही। तो एक तो ये पहलू था, लेकिन बड़े मकासद के एतबार से हो क्या रहा था कि एक ऐसी उम्मत बरपा करने का प्रोग्राम था अल्लाह ताला का कि जो पूरी दुनिया में उस वक्त खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए चुनी गई थी, और वो बजाय इसके कि खुदा का पैगाम पहुंचाने वाले बने, वो लहसुन और प्याज पर लड़ने लग गए। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हज़रत मूसा को गुस्सा आया है, और उन्होंने कहा कि क्या तुम वो चीज़ छोड़ना चाहते हो जो बढ़िया है और घटिया चीज़ लेना चाहते हो? तो आज़ादी और जिस मकसद के लिए इनको निकाला गया वो मैं पहले बता चुका हूँ कि हज़रत मूसा के बारे में फरमाया गया कि मैंने तुम्हें अच्छी तरह से तैयार किया है, परख लिया है, जांच लिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक इस कौम को निकालो और अल्लाह का पैगाम देने के लिए एक सिलसिला जो है वो उसको कायम किया जाए। तो उस बड़े, जब भी कोई आदमी किसी बड़े मकसद के लिए चुना जाता है और फिर चुनने वाला अल्लाह हो, हज़रत मूसा जैसी हस्ती हो, तो उसको ये बात जेब नहीं देती कि वो खाने पर लड़े, जिसको जेब नहीं देती। मैंने जैसा पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि तहरीकों में अक्सर जो मैंने देखी हैं उनका जो जवाल की वजह होती है वो इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। मेरे साथ आपने ये किया, उसके साथ ये किया, उसको ये दे दिया, मुझे नहीं दिया था, मैं आपके पास आया तो आप हंस कर नहीं मिले थे, उसको आप ऐसे प्रोटोकॉल दे रहे थे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो फिर तहरीकों को ख़त्म कर देती हैं। तो हर बड़ी तहरीक में जितनी मैंने भी देखी उनमें भी ऐसा ही हुआ कि वो साथियों के इस तरह के मुतालबात की नज़र हो जाती है, फिर मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है, यगानकत ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ही ख़तरा हज़रत मूसा को महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम उस चीज़ को जो बढ़िया है उसको छोड़कर घटिया चीज़ लेना चाहते हो? तो एहबतु मिस्रन, तब किसी शहर में जा पड़ो। मिस्र का लफ्ज़ बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। मिस्र के मानी शहर के होते हैं, जिस मानी में हम उर्दू में शहर का लफ्ज़ बोलते हैं गांव के मुकाबले में, बस्ती और कस्बे के मुकाबले में, उसी तरह से मिस्र का मानी वही है जो हमारे यहाँ शहर के हैं, जैसे लाहौर शहर है या गुजरांवाला शहर है। तो शहर में का मतलब होता है कि उसमें बड़ा इलाका है जो आबाद हो गया है, उसमें बाज़ार हैं, उसमें खेती बाड़ी होती है, उसमें हर ज़रूरत की चीज़ मैसर होती है। तो अब ज़ाहिर है कि सहरा में थे और सहरा से निकलने के लिए वो मदीने का लफ्ज़ बोल सकते थे, अरबी में और भी बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं, क़रिया हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि बैठे सहरा में हुए हैं और वहाँ से आपने किसी बस्ती में जाना है तो बस्ती में भी सब्ज़ियाँ मिल सकती हैं। थोड़े मिस्र का लफ्ज़ बोला है ताकि जिस मिस्र से निकल कर आए हैं उसकी तरफ ज़हन चला जाए कि अब तुम किसी मिस्र जैसे शहर ही में उतरो, यानी मतलब ये है कि ग़ुलामी ही हासिल करनी है ना फिर, यानी बड़े मकसद के लिए तुम तैयार नहीं हो और मनोसलवा पे अब तुम्हारा गुजारा नहीं है, तुम अब दोबारा किसी शहर में चले जाओ, फिर वही ग़ुलामी, फिर वही सब कुछ, वहाँ खरबूजे और लहसुन और प्याज तो मिल जाएगा लेकिन जो इस मकसद के लिए तुम्हें चुना जा रहा है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो फरमाया कि तुम अब किसी शहर में जा उतरो। एहबतु जो है वो कदीम ज़माने में किसी जगह जाने, किसी जगह उतरने, पड़ाव डालने, सब मानी में आता है। ये सिर्फ ऊंची जगह से नीची जगह उतरने के लिए नहीं आता। जैसे मंजिल है तो मंजिल का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आदमी नाजिल हुआ हो, तो लेकिन मंजिल का मतलब ठहरने की जगह है। तो ऐसे ही बेतू में ये मानी होते हैं किसी जगह जाकर पड़ाव डाल लो, रहने लगो, चले जाओ, तो वतन बना लो। तो आपने फरमाया कि तुम अब किसी मिस्र में जाकर रहो, तो सही तर्जमा अगर बात को अदा करना हो तो अब तुम किसी मिस्र ही में जाकर रहो, ये तर्जमा किया जा सकता है, क्योंकि वहीं जो कुछ तुम मांग रहे हो वो वहीं तुम्हें मिलेगा, यानी सब्जियां और इस तरह की चीज़ें। अब जाहिर है कि ये इस बात की वजह से तो सज़ा नहीं हो सकती कि आपने कहा जी मनोसलवा पर गुजारा नहीं हो रहा, आप ज़रा कोई ये सब्ज़ियाँ भी उगा दें। तो आगे जो सज़ा बयान की जा रही है वो गया है वह ज़ोरबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कनत, कि इनके ऊपर मैंने ज़िल्लत थोप दी, मस्कनत थोप दी, व बाऊ बे ग़ज़ब मिन अल्लाह, और अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे, आगे उसकी वजह बताई है कि इतनी सख्त सजाएं मैंने क्यों दी हैं। तो उस बात की अल्लाह ताला नफ़ी कर रहे हैं कि तुम्हारी तारीख बता रही है कि तुम तकवे पर नहीं रहे, और तुम्हारी तारीख बता रही है कि मैंने तुम्हारे साथ सख्ती भी की है, ऐसा नहीं कि हमेशा नरमी की है। तो अब पहला ये बात बताई कि तुम्हारे ऊपर मैंने ज़िल्लत थोप, ज़िल्लत से हम वाकिफ़ हैं, ज़िल्लत का मतलब कमज़ोरी भी है और ज़लील होना जिसको हम कहते हैं वो भी इसके अंदर होता है कि तुम बाकी बड़ी कौमों के मुकाबले में, अकवाम के मुकाबले में तुम कमज़ोर पड़ गए। मस्कनत बहुत बड़ी, इस वक्त मुझे लगता है इस आयत को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो अपनी उम्मत का ख्याल आ जाता है। हमारे ऊपर भी मस्कनत का लगता है कि अजाब जारी है इस वक्त। मस्कनत का मतलब होता है कि बेकसी तारी कर देते हैं अल्लाह ताला। मस्कीन उस आदमी को, तो बेकस होता है, बेबस होता है, कुछ कर नहीं पाता, उसी से मस्कनत निकला हुआ है कि उनके ऊपर बेबसी तारी कर दी, बेकसी तारी कर दी। इसको ज़रा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई बस ही नहीं चल रहा मसले को हल करने का, हमला हो रहा है तब भी कुछ नहीं कह पा जा रहा, मईशत तबाह हो रही है तब भी कुछ नहीं हल निकल रहा, तो ये बेकसी जो है वो तारी हो जाती है। इसी तरह जो भी प्लानिंग की जाएगी गलती होगी क्योंकि पूरी समझदारी से नहीं की जा रही, तो जो भी प्लानिंग होगी वो भी बेबसी में चली जाएगी, जो भी काम होगा वो गलती, पाँव जो भी उठाया जाएगा गलती पड़ेगा, ये मस्कनत है। तो बेकसी अपने इंतहा दर्जे की सज़ा है जो अल्लाह ताला किसी कौम पर दे देते हैं। तो ज़िल्लत थोप दी यानी बाकी कौमों के मुकाबले में कमज़ोर कर दिया, मस्कनत थोप दी कुछ कर ही नहीं पा रहे, वह बाऊब गज़ब मिन अल्लाह और अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। अल्लाह का गज़ब का मतलब है कि जो तुम इस वक्त कह रहे हो कि भाई अल्लाह हमसे राज़ी है, हम अंबिया की औलाद हैं, अल्लाह ने बता दिया कि नहीं तुम गज़ब लेकर लौटे हो। और अगर आपको सूरह अल-फातिहा की आखिरी आयत की बात जो मैंने की थी वो याद हो कि मग़ज़ूब अलैहिम, उसकी तरफ इशारा कर दिया यहाँ पर कि तुम मेरे मग़ज़ूब अलैहिम हो जिनके ऊपर मैंने अपना गज़ब नाजिल किया है। अब अगर जराइम की फहरिस्त है जिसकी वजह से ये सारी सज़ा दी गई, फरमाया कि ज़ाली का ये इस वजह से हुआ, बेअन्नहुम कानू यकफुरूना बे आयातिल्लाह, कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, व यक्तलून नबीयीन बग़ैर अल-हक, और ये बिला वजह अम्बिया को कत्ल करते थे, बग़ैर अल-हक कोई हक नहीं पहुँचता, हक यानी जुर्म हो किसी का तब तो ठीक है, तो अम्बिया को कत्ल करते थे नाजायज़ बिला वजह, कोई सबब नहीं था। तो नबियों को कत्ल करने का क्या मतलब है? नबी को कत्ल करने के दो मानी हो सकते हैं, एक ये कि वाक़ियातन कत्ल कर दिया, जैसे कि हज़रत ज़करिया के बारे में आता है, हज़रत यहिया के बारे में आता है कि इनको इन लोगों ने मार डाला, और एक कत्ल करना नाकाम हो गए लेकिन कोशिश की, जैसे नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की, जहर भी दिया, पत्थर भी मारे, तो वो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने की कोशिश की, तो ये भी जो कोशिश करता है वो भी कातिल होता है। कामयाबी नाकामी अल्लाह के कंट्रोल में होती है। वैसे मैंने कत्ल करने की गोली चला दी तो अब बीच में कोई चीज़ आ गई तो आदमी बच गया, तो मैंने तो कत्ल कर दिया उसको, अगर वो निशाना खता ना होता या बीच में कोई चीज़ ना आती तो वो आदमी मर जाता। तो यक्तलून के दोनों मानी है कि तुमने सिर्फ ये नहीं कि कत्ल किए बल्कि कत्ल करने की कोशिशें करते रहे, बहुत सारे नबियों के बारे में तुमने ऐसा किया होगा। और फरमाया कि ज़ालिका बिमा असव व कानु यातदून, और ये सज़ा मैंने गुस्से का इजहार जो किया, इनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत जो थोपी, वो इस वजह से कि ये नाफरमान थे और हदूद से तजावुज़ करने वाले थे। तो अब ये जराइम को नोट कर लीजिए, ये क्योंकि अभी तक जो मज़मून था उसका ये एक समझ लीजिए कि पीक पे पहुंचा दिया अल्लाह ताला ने, क्लाइमेक्स पे कलाम पहुंच गया है कि तुम ये ख्याल कर रहे हो कि हम बनी इसराइल हैं, अल्लाह ने हमसे फजीलत दे रखी है तो अब ये फजीलत कभी छीनेगी नहीं, उसको बता दिया कि नहीं जराइम की वजह से छीन ली जाएगी। वो जराइम अल्लाह ताला ने बता दिए, आयतों का इनकार सबसे पहले नंबर पर यह बताया, क्योंकि इस वक्त जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार हो रहा था, कुरान की आयात का इनकार हो रहा था, इसलिए उसको सबसे पहले नंबर पर रखा है। उसके बाद जुर्म बताया कि नबियों को कत्ल करने की कोशिश भी करते रहे और कत्ल भी किया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो अमल करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसको भी दूसरे नंबर पे उसको बयान कर दिया। और जो हम ये दोनों काम कौन करेगा? असम व मा कानू याता दून वाले लोग करेंगे, जो नाफरमान होते हैं और हदूद से तजावज करने वाले होते हैं। तो वो अमूमी जराइम दो बयान कर दिए और पहले दो मिसालें दे दी उसकी। यूँ समझ लीजिए कि मासियत और एतदा यानी बमा असऊ और वकानु यातदून, ये दो बुनियादी जुर्म हैं, नाफरमानी और हदूद से तजावज। इनकी दो मिसालें ऊपर दे दी, उनकी दो मिसालें ऊपर दे दी। आयतों का इनकार मासियत से ताल्लुक रखता है और अम्बिया का कत्ल यातदून से ताल्लुक रखता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारे जराइम कितने थे, इस वजह से तुम्हें सजाएं मिलती रही हैं। ये ख्याल ना करो कि तुम बनी इसराइल हज़रत याकूब की औलाद होने की वजह से, इब्राहिम की औलाद होने की वजह से, मूसा और हारून की औलाद होने की वजह से बच जाओगे, ऐसा नहीं है। तो मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा गज़ब ज़ाहिर किया जब भी तुमने गलत हरकत की। अब चूँकि एक बात क्लाइमेक्स तक पहुँच गई है तो असूली बात भी यहाँ मुनासिब था कि बयान कर दी जाए। वो अब अल्लाह ताला ने असूली बात बयान की है कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईन मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर व अमला सालेहन फलहुम अजरहुम मिन रब्बिहिम, के खा मुसलमान हो यानी उस वक्त के सहाबा हम लोग उम्मत मुस्लिमा वाले, वल्लज़ीना हादू या यहूदी हों, वन्नसारा या नसारा हों। नसारा और मसीहियों में थोड़ा फ़र्क है। नसारा जो होते हैं वो हमारे मालूमात के मुताबिक वो लोग हैं जो हज़रत ईसा के सही फॉलोअर्स हैं, और जो मसीही हैं वो दरअसल सेंट पॉल के फॉलोअर्स हैं, के शरीयत भी मनसूख हो गई और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल नसारा अल्लाह ताला नाम लिया है। गालिबन ये मुमकिन है कि अरब दोनों को ही नसारा कहते हों, लेकिन बहरहाल नसारा वो लोग हैं जो अपने आप को हज़रत ईसा के साथ नासरा में पैदा होने की वजह से नसारा कहलाते हैं। वस्साबईन, साबईन भी अरबों के इलाकों में एक ग्रोह इराक वगैरह और इसके सरहदों पर अरब के इलाके में रहता होगा, इनको भी यहाँ ज़िक्र किया गया है। ये तीनों के तीनों अल्लाह के नबियों के मानने वाले हैं, यहूदी भी, नसरानी भी और साबईन भी। ये मुशरिक नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने लिख दिया कि ये पारसी थे, सितारा परस्त थे, ऐसा नहीं है। ये तीनों के तीनों मानने वाले थे अम्बिया के। अब ये बात चूँकि दौरे जदीद में मालूमात बहुत आसानी से मिल रही हैं, तो इराक और शाम वगैरह के इलाकों में साबईन के नाम से जो लोग पाए जाते हैं वो अपने आप को हज़रत याहिया के मानने वाले बताते हैं, और वो हमारी तरह ही मुवाहिद हैं, हमारी तरह अम्बिया को मानने वाले हैं, तो इसलिए वो सितारा प्रस्त नहीं है। अलबत्ता मौलाना फराही ये कहते हैं कि इनको साबईन सबा से बोला गया, जो सुबह का सितारा नमूदार होता है, तो गालबन ये उसके तुलू होने से पहले या आसपास कोई इबादत करते हो, जैसे हम भी सूरज के लिहाज से इबादत करते हैं कि सूरज चढ़ने से पहले, सूरज चढ़ डूबने के बाद, सूर्य डूबने से पहले, तो वो सितारों के लिहाज से कोई वक्त का तायुन करते होंगे, तो उस वजह से फिर ये इनका नाम साबईन पड़ गया कि वो उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब वो सितारा तुलू होता है, या इस वजह से कि वो माहिर थे सितारों के, ये भी इम्कान हो सकता है। ये मौलाना फराही की बात है। तो बहरहाल ये तीनों जिस तरह से जिक्र हुआ है, ये तीनों मुवाहिदीन हैं यानी तौहीद परस्त हैं और अम्बिया के मानने वाले हैं। तो फरमाया कि तुम में जो ईमान वाले हैं यानी सहाबा उस वक्त के और मुसलमान, और जो यहूदी हैं और जो नसरानी हैं और जो साबईन हैं, तो मेरा असूल ये नहीं है कि इन नामों की वजह से मैं तुम्हें कामयाबी दे दूँगा कि तुम मुसलमान हो गए हो तो कामयाब हो जाओगे, तुम यहूदी हो गए हो तो कामयाब हो जाओगे, तुम नसरानी हो गए तो कामयाब हो जाओगे, साबईन हो गए तो कामयाब हो, ये असूल नहीं है मेरा। असूल यह है कि मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर, जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और आखिरत पर ईमान लाएगा, वह अमला सालेहन और नेक अमल करेगा, उसके लिए मेरे पास अजर है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो खा वो यहूदियों में से हो, खा मुसलमानों में से हो, खा नसारा में से हो, खा साबईन में से हो, अगर ये शर्त पूरी नहीं करता तो मेरे पास उसका अजर नहीं है। ये इस आयत की کلائمیکس پہ پہنچا کے اصول بیان کر دیا کہ میرا اصول یہ نہیں تھا کہ یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے یا اولاد ابراہیم میں سے ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے, یہ اصول نہیں تھا میرا. نہ یہ تھا کہ صابئی ہو جاؤ, نصرانی ہو جاؤ, کچھ ہو جاؤ. میرا اصول یہ تھا کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر, آخرت پر, اور نیک عمل کرے گا, اس کا اجر میرے پاس محفوظ ہے, وہ ضرور اجر پائے گا. اب اس بات کو پوری طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بات ہے کیا, کیونکہ اس میں دو چیزوں کا, ایمان کا ذکر ہے اور عمل صالح کا ذکر ہے. پانچ جو عقیدے خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں سورہ آل عمران میں جا کر, ان کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان, یہ تین چیزیں بیان نہیں کی گئیں یہاں پر. صرف ایمان باللہ اور یوم آخرت کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیے یہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اگر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ دیتے کہ من آمن باللہ والرسل وکتبہ وملائکاتہ ہی, تو کئی قومیں عذاب کے لیے لازم ہو جاتا ان کے لیے. مثلا حضرت آدم کے اولاد کتنے نبیوں کو مانتی تھی؟ ایک. تو تمام رسولوں کو ماننا ممکن نہیں تھا ان کے لیے, ٹھیک ہے. یہودیوں کو لے لیجئے, یہودیوں کے لیے دو نبیوں کو ماننا ممکن نہیں تھا. جب وہ یہودی ہوئے تو اس وقت تو صرف موسیٰ تک معاملہ تھا یا بعد کے کچھ. تو اس لیے اگر یہاں پر یہ جملہ بول دیا جاتا کہ جو سارے رسولوں پر ایمان لائے, تو یہ آیت حقائق کے خلاف ہو جاتی. اس لیے بنیادی طور پر دو ایمان ذکر کر دیے گئے, جس کا لازمی نتیجہ یہ ایمانیات ہے. جو اللہ کو مانے گا فرشتوں کو بھی مانے گا, جو اللہ کو مانے گا اس کے رسولوں کو بھی مانے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو مانتا ہو اور ایک آدمی آ کر کہے, ثابت کر دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ نہ مانے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ایمان باللہ کے اندر یہ تینوں چیزیں لازمی شامل ہیں. اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی میں نے نہیں مانی, تو اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فرشتے بنائے ہیں اور وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں میں نے نہیں ماننا, تو اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ تو ایمان باللہ میں ساری بات شامل ہے. لیکن رسولوں کی فہرست چونکہ نہیں دی جا سکتی, تو نہ اس طرح سے ذکر کیا جا سکتا ہے اس موقع پر, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ جو حضرت آدم کی اولاد پر بھی لاگو ہونا ہے, میرے آپ کے اوپر بھی لاگو ہونا ہے, اور یہودیوں پر بھی ہونا ہے, اور نصرانیوں پر بھی ہونا ہے. تو اس لیے وہاں یہ اصول بتانا پیش نظر تھا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو ساری بات کو کور کر لیں وہ کیا ہے. تو وہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں, اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا. ان دونوں کا ذکر لازمی کرنا پیش نظر ہے, کیونکہ یہ آدم علیہ السلام بھی اگر نبوت ملنے سے پہلے پہلے انہی دو چیزوں کو مانتے ہوں گے. آدم علیہ السلام جب نبوت, جب ان کا استعفا ہوا ہے نبوت کے لیے, تو اس سے پہلے تو ایک عام آدمی تھے. وہ کیا مان رہے تھے؟ وہ صرف دو چیزیں ماننے پہ مجبور تھے, اللہ اور آخرت. تو اس لیے یہ پورے اصول کو بیان کرتی ہے اور بنیادی مطالبات کو بھی بیان کرتی ہے. بنیادی مطالبات کیا ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی, وہ افریقہ کے کسی دور کے جنگل میں رہتا تھا, کسی نبی کی اطلاع نہیں پہنچی اس کو, لیکن اس نے کائنات پہ غور کرنے کے بعد اپنی فطرت کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ کوئی اللہ ہے اور میرا امتحان ہونا ہے, یہ اجر پائے گا اللہ کے, کیونکہ اس نے, اور اس کے مطابق پھر نیک عمل کرنے لگ گیا. اس نے پورا ایمان مکمل کر لیا ہے نبیوں کے بغیر, کہ اس نے خدا کو مان لیا ہے اور آخرت کو مان لیا ہے, تو اس نے کائنات کی حقیقت جان لی ہے. اور ہے کیا؟ اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے, تو اس نے اصل میں پوری بات سمجھ لی. تو یہ بنیادی ترین فہم ہے دین کا, بنیادی جہاں دین کھڑا ہے وہ یہ دو نقطوں پر کھڑا ہے, اس کے لحاظ سے اس نے عمل صالح کرنا شروع کر دی. اب اگر یہاں اللہ تعالیٰ یوم آخر کا ذکر نہ کرتے, صرف آمنہ باللہ کا ذکر کرتے, تو پھر عمل صالح کی نیت پیدا نہیں ہونی تھی. میں نے اللہ کو مانا اور آخرت کو مانا, اس لیے نیک عمل کیا. تو اب نیک عمل کی وہ بدل گئی, نیت بدل گئی, اس کا مقصد بدل گیا. میں اور آپ بعض اوقات نیک عمل کرتے ہیں دنیا کے لیے, وہ یہاں زیر بحث نہیں ہو, ضائع ہو جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے سورہ احقاف میں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت والے دن کہ تمہارے نیک اعمال کا صلہ تمہیں دے دیا گیا تھا دنیا میں, تم نے فائدہ اٹھا لیا تھا, اب معاملہ ختم, کیونکہ ہم نے دنیا کے لیے کیے تھے کافروں نے. तो काफिर आदमी दुनिया के नेक वो भी काम कर रहा होता है, कहीं माँ बाप की खिदमत कर रहा है, कहीं रफाई फलाही काम कर रहा होता है, कहीं अब देखिए ना कि कितने ही गैर मुस्लिम हैं, मुलहिद हैं बल्कि कहना चाहिए, वो दुनिया की खिदमत कर रहे होते हैं, बड़े बड़े सोशल पैमाने पर काम हो रहे होते हैं, कोई अस्पताल बन रहे होते हैं, कुछ बन रहा होता है, गरीब मुल्कों के अंदर वो पता नहीं क्या क्या इदारे बना रहे होते हैं, आपके जो पोलियो के इंजेक्शन आते हैं कहाँ से आते हैं, तो वो सारे काम हो रहे होते हैं, उनका अजर उनको मिलना ही मिलना है, लेकिन आखिरत को मानते ही अब मेरा काम नेकी वाला आखिरत के लिए होना शुरू हो जाता है, इसलिए आखिरत का जिक्र ज़रूरी था। तो ईमान बिल्ला मुख्तसर चीज़ है, लेकिन इसमें सारे ही ईमान शामिल है, अल्लाह के हवाले से फिर सारी बातें माननी पड़ेंगी। मैं कुरान को क्यों मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह की किताब, दुनिया में यहाँ कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं इनको नहीं मानता, इस मानी में जिस मानी में ईमान का हिस्सा होता है, तो कुरान मजीद को मैंने इसलिए माना कि वो अल्लाह की किताब है, तो ईमान बिल्ला में ये चीज़ शामिल हो गई। लेकिन मुख्तसर तरीन पहले इंसानों में चले जाएँ तो बुनियादी मुतालबा क्या होगा, जो अल्लाह पर ईमान लाया और आखिरत पर ईमान लाया, तो उस बात को भी समेट लिया अल्लाह ताला ने, और आज हमारे लिहाज से भी समेट लिया, आखिरत पर ईमान रखता हो यानी उसकी सारी ज़िंदगी फिर आखिरत के लिए हो जाए, वो नेकी करे आखिरत के लिए कि मैंने वहाँ जवाब देना है जाकर, और अमले साले करे। अमले साले की हम सारे वाकिफ़ हैं, लेकिन दीन इस्लाम के एतबार से फिर दो तकसीमें हो जाती हैं, एक वो अमले साले हैं जो हमारी फितरत और अखलाक से फूटते हैं, सच बोलना है, अदल करना है, झूठ नहीं बोलना, बददियानती नहीं करनी, सौदा पूरा तोलना है, वादा पूरा करना है, ये हमारी फितरत से फूटते हैं, और कुछ अमले साले होते हैं जो हमें शरीयत सिखाती है, मतलब पाँच वक्त की नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ये हमें शरीयत ने सिखाया है। अब मैं अगर नमाज अपने तरीके पर पढ़ने लगूँ, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर ना पढ़ूँ तो कबूल नहीं होगी, या मैं पाँच नमाज़ें पढ़ूँ ही ना, अल्लाह को कौन सी ज़रूरत है पाँच नमाज़ों की, अब मैं गुनाहगार हो जाऊँगा। तो अमले साले फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक वो जो मेरी फितरत मेरे अखलाक से फूटता है और उसको मैं अपनी ज़िंदगी में अमल में ले आता हूँ, और दूसरा ये है कि शरीयत ने मुझे जो बताया है, ठीक है, तो ये अमले साले हो जाते हैं। तो फरमाया कि अगर कोई आदमी, अब फिर हम अमले साले में एक और तकसीम भी करते हैं जो आप सब लोग जानते हैं कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, वो भी अमले साले की एक तकसीम है, लेकिन वो दूसरे जाविये से, मैं जिस जाविये से कर रहा हूँ ताकि वो, मैं चूँकि इस आयत को मैं एक ऐसी आयत मानता हूँ जो हज़रत आदम के नबूवत मिलने से पहले वाले मामले को भी कवर करती है और मुझ तक आती है, उसमें जो अमले साले है वो महज फितरत के ऊपर रहना है, उसमें हो सकता है शरीयत ना मिली हो अभी, जैसे हज़रत आदम को कहा गया कि इस दरख्त के पास ना जाओ, उस वक्त इतनी ही शरीयत थी, लेकिन क्या वो आपस में एक दूसरे को झूठ बोल सकते थे, नहीं, वो फितरत के मुताबिक अखलाक के मुताबिक रहेंगे। तो फितरत के मुताबिक काम करना, अखलाक के मुताबिक काम करना और शरीयत के मुताबिक, ये गुनाह का उलट है, गुनाह का मतलब होता है फितरत के ख़िलाफ़ काम करना, अखलाक के ख़िलाफ़ काम करना और अपने अल्लाह के बताए हुए शरीयत के ख़िलाफ़ काम करना। तो ये अमले साले हो गए, अमले साले को हम इख्तियार करते हैं। साले का मतलब क्या है, हमारे यहाँ इसका नेक अमल तर्जमा कर दिया जाता है, नहीं, साले का मतलब है आखिरत के लिहाज से फिट होने वाला अमल, साले का मतलब है फिट, जो बिल्कुल मुनासिब हो, जो किसी चीज़ के साथ बिल्कुल मुआफ़क़त रखता हो। तो आखिरत के लिहाज से दुनिया बनाई गई है, तो आखिरत के लिहाज से जो फिट आता हो, और फितरत के लिहाज से जो फिट आता हो, मुझे अल्लाह ने नेकी की फितरत दी है, मुझे नहीं मतलब इंसानों को कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ अपना जिक्र नहीं है, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने नेकी की फितरत दी है, तो मेरी नेकी की फितरत में फिट आने वाला काम, खुदा की स्कीम जो बनाई है उसने आजमाइश की, उसमें फिट आने वाला काम, यह है साले। साले का मतलब सिर्फ नेक नहीं होता बल्कि बिल्कुल मुनासिब हाल, मौजू, फिट आने वाला, उसमें सूटेबल, फ़ायदेमंद, ये अमले साले का मतलब है। फलहुम अजरहुम इंदा रब्बे, ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास है, यानी इनको अजर मिलेगा उनके रब से। तो ये तीन शर्तें जो पूरी कर देगा, अगर मुसलमान है ये तीन शर्तें पूरी नहीं करता, अजर से महरूम रहेगा। यहूदी है ये तीन शर्तें पूरी नहीं करता, अजर से महरूम रहेगा। नसरानी है शर्तें पूरी नहीं करता महरूम रहेगा, साबे ही है ये शर्तें पूरी नहीं करता महरूम रहेगा। तो बताया, अल्लाह ताला बता के रहे हैं कि मेरा असूल ये था, तुमने छोड़ दिया, तुमने समझा कि यहूदी होना काफ़ी है। आगे चल कर ज़रबैस भी आएगा, ये कहते हैं कून हूद ना नसारा, भाई क्या यहूदी हो जाओ या नसरानी हो तब हम तुम्हें हदायत पर मानेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, असूल यह है कि तुम ईमान वाले बनो, असूल यह है कि तुम अमले साले वाले बनो। अगर ये नहीं बनते हो तो तुम्हारा कोई मेरे पास हिस्सा नहीं होगा आखरत में। तो ये बुनियादी असूल अल्लाह ताला ने ये समझा दिया कि तुमने काम क्या करना है। अब जो कुरान उतरा है तो तुमसे मुतालबा मेरा क्या है, मेरे ऊपर पूरा ईमान लाओ और मेरे ऊपर ईमान लाने के जो तकाजे हैं वो पूरे करो, मेरी किताबों को मानो, मेरे रसूलों को मानो, मेरे अहकाम को मानो। नहीं मानोगे तो यकफरूना बे आयात अल्लाह के जुर्म करोगे, दोज़ख में जाओगे। और आखरत को मानना है तो नेक अमल करना पड़ेगा वरना आखरत में नाकाम हो जाओगे। तो ये काम अगर नहीं करोगे तो मेरे नज़दीक यहूदी होने, मुसलमान होने, नसरानी होने, साबई होने की कोई अहमियत नहीं है, यह आयत ये बता रही है। अब इसके बाद जो पैगाम जहाँ पहुँचाना था वो पहुँचा दिया कि तुम लोगों को करना क्या है, मेरे पास अच्छा बनने के लिए ये काम करना पड़ेगा। और बशारत बहुत बड़ी दे दी कि तुम्हारा अजर तुम्हारे रब के पास होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो जो लोग ऐसा करके आएंगे उनके लिए कोई खौफ और कोई हुज़न नहीं होगा। इस आयत को अक्सर हमारे यहाँ जो अहले तसव्वुफ़ हैं उन्होंने आखरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जिस तरह फलाहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम है आखरत से मुतल्लिक, अगला जुमला भी आखरत से मुतल्लिक है, ये दुनिया से मुतल्लिक नहीं है। यानी यहाँ पर हक सच बोलने वाले सच्चे लोगों को डर भी होते हैं, हुज़न भी होते हैं। और एक नेक आदमी को तो ये भी हुज़न होता है कि कल की नमाज रह गई, काश मैं कल सच बोल लेता, नेक आदमी को तो ये भी हुज़न होता है। तो नेक आदमी खौफ से हुज़न से महफूज हो ये दुनिया में नहीं है, आखरत में होगा। दुनिया में वो गमज़दा भी हो सकते हैं, खौफज़दा भी हो सकते हैं। खुद हज़रत मूसा जैसे उलुल अज़म रसूल के लिए आया है कि जब वो जादूगरों ने रस्सियाँ डाली हैं तो डर गए, अल्लाह ने कहा कि मूसा ना डरो, बस असा डाल दो। तो अब वो कोई हज़रत मूसा से ही बड़ा होता है, यानी हज़रत मूसा छोटे रसूलों में से नहीं है, कुरान भरा हुआ है उनकी शान बयान करते हुए। तो वो भी खौफज़दा हो गए जादूगरों की लाठियाँ देख कर जो सांपों की तरह लग रही थी, डर गए। तो डरने का यहाँ रसूलों के साथ मसला नहीं है, बल्कि नेक लोग दुनिया में नहीं डरेंगे ये मतलब नहीं है, आखरत में खौफ नहीं होगा और आखरत में हुज़न नहीं होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खौफ और हुज़न दो जामे बातें हैं और ये उन आयतों में से है कि जो इंसान नहीं कह सकता। यानी आप पूरी पूरी ज़िंदगी में पेश आने वाली सारी चीज़ों का खुलासा कर दें ऐसे जुमले में कि सारे ही गम ज़ायल हो जाएं, ये नामुमकिन है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी को अहाता कर लेती हैं, कि आपने अगर कहना हो कि बहुत खुश होगा तो ये दो चीज़ें ख़त्म कर दें तो आप मुकम्मल मानी में खुश हो जाएंगे। मसलन आपको बुढ़ापे का खौफ ख़त्म हो गया, चोर का खौफ ख़त्म हो गया, पैसा खर्च होने का खौफ ख़त्म हो गया, ये खौफ है ना सारे, जान जाने का खौफ ख़त्म हो गया, तो आपको कितनी खुशियाँ मिल जाएंगी। ये खौफ दुनिया में ख़त्म नहीं होते, जान सबकी जानी है, कुलू नफ्सुन ज़ायकतुल मौत, माल खर्च होता रहता है, आना तो अलग बात है, आ गया तब भी खर्च हो जाना उसने, बखील से बखील आदमी कुछ ना कुछ खर्च कर रहा होता है, तो खौफ ख़त्म नहीं होते। अब कुछ पछतावे होते हैं कि काश मैं वो कारोबारी मामला कर लेता, काश उस वक्त घर खरीद लेता, काश बेटी की शादी कर चुका होता, तो बाकी कुछ भी नहीं। इन दो लफ्ज़ों ने ऐसा घेरा है पूरी आपकी परेशानियों को और खुशियों को कि ये बस अल्लाह ताला ही कर सकता, ऐसा खुलासा इंसान नहीं कर सकता, बेबसी। तो ये उन आयतों में से है जो बताती है कि ये अल्लाह ताला की किताब है, यानी बिल्कुल दो टोक कर देती है उन चीज़ों में से। तो वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके ऊपर कोई खौफ ना कोई हुज़्न, यानी ना कोई पछतावा ना कोई गम और ना कोई मुस्तकबिल में आने वाले किसी मसले का अंदेशा। तो अगर ये दो चीज़ें हमारी इस दुनिया में निकल जाएं तो जन्नत बन जाएगी। नेमतें मिलना एक अलग चीज़ है, वो इन नेमते होंगी तो खौफ होगा ना, मतलब अगर ज़िंदगी नहीं है तो खौफ किस बात का। तो खौफ कुछ चीज़ें होती हैं तो इसलिए नेमते शामिल हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि वो निकल जाती हैं। अब यहाँ जो बात अल्लाह ताला ने पहुँचा दी कि देखो अहले किताब को अल्लाह ताला ईमान की दावत दे रहे हैं कि देखो मेरा वादा पूरा करो, मैंने तुमसे वादा लिया था कि एक पैगंबर आएगा, तुमने उसको मानना है और हक बात को मानो, नमाज़ पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर तकवा बेदार हो, और ये ख्याल छोड़ दो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा इस वजह से कि तुम अंबिया की औलाद हो। नहीं, मेरा असूल यह है कि ईमान लाओगे, आखिरत के लिए ईमान लाओगे, मुझ पर ईमान लाओगे, नेक अमल करोगे, तब माफ़ करूँगा। तो इसलिए तुम इस रसूल को भी मान लो, इस रसूल को भी मान लो। तो अब दावत जो नबी सल्लम पर ईमान की है वो इस तरह से दी जा रही है, किसको? बिगड़ी हुई कौम को, एक को। अब यहाँ तक जो बातें थी, वाक़ियात जो थे, वो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं तौरात मिलने से पहले पहले। तौरात लेने गए हैं, लेकर आ गए हैं, लेकिन अभी उसके हवाले से यहूद से कोई बात नहीं हुई है, वो बछड़ा मामूद बना लिया उन्होंने, सब कुछ हो गया। तौरात हज़रत मूसा को मिल गई, अभी कौम के हवाले नहीं की गई। ठीक है, एक तो ये बात, पीछे जितने भी वाक़यात हैं वो उस वाक़े से पहले पहले, आगे कुछ वाक़यात उसके बाद वाले, लेकिन अगले जो वाक़यात हैं वो उनका, उनके बयान करने का मकसद थोड़ा मुख्तलिफ है। वो आगे चल कर अल्लाह ताला ने उसको वादे किया है, ये आयत 74 में जाकर और 75 में जाकर उसको बयान किया है कि इन्होंने तौरात मिलने के बाद जो काम किए उसकी वजह से इनके दिलों के अंदर खराबी पैदा हुई है। अब जो दो तीन वाक़यात आएंगे वो ये बताने के लिए आएंगे कि यहूद ने जब ये हरकतें की तौरात मिलने के बाद तो उनके दिल में बिगाड़ पैदा हुआ। तो अब तुम ये समझते हो कि ये ईमान ले आएंगे इस बिगाड़ के बाद? नहीं, ये बात समझाने के लिए अगले वाक़यात आ रहे हैं। यानी पहले ये बताया कि तुम ईमान लाने के लिए तकवे की ज़रूरत है, मेरे गज़ब से बचने के लिए तकवे की ज़रूरत है, ईमान लाना पड़ेगा तब बचोगे। अब आगे बताया कि तुम ये ईमान क्यों नहीं लाएंगे, उसके लिए दो तीन वाक़यात सुनाए जा रहे हैं। उसमें से पहला वाक़या ये है कि वा इज़ अखज़ना मीसाकुकुम व रफ़अना फ़ौकुकुम अत्तूर, और याद करो जब हमने तुमसे मीसाक लिया था और तूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया था और हुक्म दिया था कि खुजू मा आतैना कुम बिकुव्वत, कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसको पूरी कुव्वत से थाम लो, वस्कुरु माफी, और याद रखो जो कुछ इसके अंदर लिखा गया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मेरे गज़ब से बच सको। उसी बात को दूसरे अंदाज में, जो पिछली आयत में बताया गया उसी को दूसरे अंदाज में बता दिया, लेकिन तौरात देने के हवाले के साथ, कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसको मजबूती से थाम लो, और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है तौरात के अंदर, वो जो अलवाह दी गई थी हज़रत मूसा की तरफ से, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसको याद रखना सारी ज़िंदगी। याद रखने का मतलब हमारे यहाँ बस वो लोग जिक्र करने का मफहूम ले लेते हैं, याद रखने का मतलब अमल करना है तो अमल करना है, उसको अपनाना है तो अपनाना है, ये याद रखने का मतलब होता है, ताकि तुम बच सको। अब ये वाक़या है, जैसे मैं पहले भी वाजे कर चुका हूँ कि पीछे जो 40 दिनों का मामला हुआ था, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को कहा था 30 दिन के लिए, तो वो 10 दिन पहले चले गए। उसमें हुआ क्या था वो मैं वाजे कर चुका हूँ, दोबारा याद दिला देता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा था कि मिस्र से निकलने के बाद तुम तूर तक पहुँचोगे, बस में फुलां तारीख को, फ़र्ज़ कर लीजिए कि अब ये अगस्त चल रहा है तो आप सितंबर की 30 तारीख को पहुँचेंगे, तो सितंबर की 30 तारीख को कौम समेत आप जब तूर के पास पहुँचें तो फिर आप पहाड़ पर आ जाइएगा तूर के ऊपर। हज़रत मूसा ने क्या किया कि अपनी कौम को कहा कि तुम आओ मेरे पीछे पीछे आओ, और वो तेज़ चलते चलते 10 दिन पहले पहुंच गए, शायद कहीं रुके ही नहीं, बस सफ़र में रहे, 10 दिन पहले पहुंच गए तूर पर। अल्लाह ताला ने भी कहा कि पहले आ गए हो, उन्होंने कहा जी हाँ मेरी कौम पीछे पीछे आ रही है, वो भी तूर के पास पहुंच जाएगी। अब वो तूर के पास जब पहुंच गए, बछड़ा बुछड़ा बना लिया सब कुछ, हज़रत मूसा अब 40 दिन के लिए ऊपर है पहाड़ के ऊपर, वो नीचे ही नहीं आए, कौम को उनके गायब होने का भी शक, भाई 30 दिन के लिए गए थे अब तो 40 दिन हो गए, 10 दिन ऊपर हो गए, तो अब वो उनके यहाँ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। फिर जब वापस आए हैं उसी तूर के नीचे, फिर इनके आगे चलकर मालूम होगा कि 70 लोगों को चुना गया, या ये पूरी कौम थी, जो कुछ भी था, इस कौम ने तूर के पास जाना ही जाना था। अब ये पहुंच चुके हैं, वो वाकया भी हो चुका है बछड़े को माबूद बनाने का। अब तूर के नीचे खड़े होकर खुदा के साथ बैत कर रहे हैं, मिसाक कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, उसको बयान किया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने बजाय अपना हाथ जाहिर करने के तूर पहाड़ को इनके ऊपर साइबान की तरह, जैसे छतरी ऊपर आ जाती है, उस तरह तूर पहाड़ इनके ऊपर आ गया था। उसके साय में इन्होंने हज़रत मूसा के साथ मिसाक किया, अल्लाह के साथ गया, हज़रत मूसा के ज़रिए से अल्लाह के साथ मिसाक किया। उस मिसाक में जो कुछ कहा गया उसमें से दो एक का जिक्र आगे आया गया। उसमें पहली बात ये कही गई कि तुम तौरात जो तुम्हें दी जा रही है, जो अहकाम अशरा दिए जा रहे हैं, उनको मजबूती से थामोगे, उनको पूरी तरह से अपनाओगे, और जो कुछ इस मिसाक के अंदर लिखा हुआ है, इस तौरात के अंदर, वो पूरे का पूरा अपनाओगे, उसको हमेशा याद रखोगे, ताकि तुम मेरे गज़ब से बच सको। तो अब अल्लाह ताला ने मज़ीद वादे कर दिया कि मैं जो कह रहा हूँ ना कि मन ना माना बिल्ला, जो ईमान लाएगा आखिरत पर और अल्लाह पर और नेक अमल करेगा, तो वही मैंने उस वक्त नहीं कहा था जब तूर के नीचे तुम्हारा अहद हुआ था। अब फरमाया सुम्मा तवल्लई तुम मिन बाद ज़ालिक, लेकिन तुम फिर गए इसके बाद। अब ये जुर्म डबल हो गया है। पहले था तौरात मिलने से पहले ग़ुलामी में से निकले थे, अल्लाह ताला एक नरमी करते चले आ रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि तौरात मिलने के बाद, मिसाक करने के बाद, हज़रत मूसा जैसे रसूल के साथ इतने मोजज़ात देखने के बाद ये मामला हो रहा है और तूर के साए में हो रहा है। यानी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अल्लाह ताला आज हमारे साथ ये मामला करें कि भाई मीनारे पाकिस्तान को उठा कर ले आएँ मॉडल टाउन में, और कहेंगे और मॉडल टाउन के तहत मैं तुम्हारे साथ मुआहदा करता हूँ, तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि क्या संजीदगी होगी, क्या हैबत होगी, किस दर्जे का मिसाक हुआ होगा कि तूर पहाड़ उठा के आपके ऊपर कर दिया गया। लेकिन आप, बाज़ लोगों ने तो लिखा है कि मुअल्लिक था उनके ऊपर, यानी ज़मीन से उखड़ कर ऊपर, जिसको साइबान की तरह लोग कह रहे हैं। तो अगर मैं तो सिर्फ इतने को भी काहिल हूँ कि अगर वो सिर्फ झुक ही जाए और फिर मुआहदे के बाद वापस अपनी जगह चला जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो मुअल्लिक था ऊपर छतरी की तरह, तो तब भी बहुत संजीदा मामला है। लेकिन इस संजीदा मामले के बावजूद क्या हुआ? फिर सुम्मा तवल्लई तुम मिन बाद ज़ालिक, इतने बड़े, बाद ज़ालिक में बड़ा ज़ोर है, इतने बड़े मिसाक के बाद तुम फिर गए। फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल ख़ासिरीन, अगर अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हारे ऊपर ना होता और उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर ना होती, तो तुम घाटा पाने वालों में से, यानी जुर्म इतना बड़ा है कि साफ़ कर दिए जाते। अब ये मैं बता चुका हूँ कि इसकी वजह क्या है। ये अल्लाह ताला का निशान है ये कौम, और इस निशान को अल्लाह ताला ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। इनके ऊपर गज़ब आना भी अल्लाह की निशानी है, इनके ऊपर रहमत आना भी अल्लाह की निशानी है। ये बग़ैर पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों में जाए बग़ैर अगर अपने अंदर अपने दीन को कायम कर लें, तो तरक्की मिलेगी, ज़मीन व आसमान के ख़जाने खुलेंगे। ये मुआहदा इनके साथ भी है और बनी इस्माइल के साथ भी है कि बिल्कुल जाहिल अनपढ़ हों लेकिन अल्लाह के दीन को अपना लें, तो सारी यूनिवर्सिटियां दुनिया की इनके लिए काम करना शुरू कर देंगी, वो कोई मसला नहीं। हमने इसको देखा भी है, जब सऊदियों ने टूटा फूटा ही शरीयत को अपनाया है तो अल्लाह ताला ने ख़जाने खोल दिए। यानी वो ज़माना देखा है सऊदी अरब ने कि अमरीका इनसे कर्ज लेता था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये कमज़ोर पड़ गए तो अल्लाह ताला ही पीछे हट गए। हमने अपनी आंखों से देखा, 60-70 साल पहले की बात। तो इस तरह से ये मामला अल्लाह ताला इनके साथ, तो यहूद के साथ यानी बनी इस्माइल और बनी इसराइल, ये दो घराने हैं जिनको अल्लाह ने अपनी निशानी के तौर पर रखा, इनको अल्लाह ताला मिटाना नहीं चाहते, ये क्यामत तक रहेंगे, यहूदी भी, ईसाई भी, मुसलमान, बनी इसराइल भी, नसरानी भी और यहूदी भी, ये रहेंगे दुनिया में, ताकि अल्लाह का वो जो निशान है वो कायम रहे। तो इसलिए अल्लाह ताला इनको मिटाते नहीं। तो इसको यहाँ बयान किया गया कि अगर अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हारे ऊपर, ये कानून न तय पा गया होता कि तुम्हें बाकी रखना है तो तुम्हें मिटा दिया जाता, तुम घाटा पाने वालों में से हो जाते। तो ये वो दास्तान है जो अल्लाह ताला ने यहाँ सुनाई है। वक्त हो चुका है तो मुख्तसर तौर पर दोबारा दोहरा दूँ कि अब जो वाक्या सुनाए जा रहे हैं वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शरीयत मिलने के बाद जब तुमने खराबियाँ की तो फिर तुम्हारे दिलों में टेढ़ आ गया है, अब तुम ईमान नहीं लाओगे। उस आयत से पहले 62 नंबर आयत से पहले ये बता रहे थे अल्लाह ताला कि मेरा अमल तकवे की बुनियाद पर तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक है, जब तुमने खराबी की मैंने सजा दी है, और उसको फिर यहाँ ख़त्म कर दिया था। अब अगला नया मज़मून शुरू हुआ है ये बताने के लिए कि ये ईमान क्यों नहीं लाएंगे। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करूँगा आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।